नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम आज का ये बाइबल अध्ययन आरंभ करें, सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन नए मित्रों का भी जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्र लिखते हैं और अपनी गवाहियों को, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। आप भी अवश्य अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कह सकें। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं कि आज हम फिर से इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने इतिहास की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया है और पिछले अध्ययन में हमने वंशावलियों को देखा और इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को रचा है, न कि किसी जानवर से या पशु से हम बने हैं। आज हम उसे आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और सुधारते हैं। आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप उनके आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को और एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने निश्चित रूप से अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए। इतिहास की पुस्तक से जिन बातों को हम पढ़ते और सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो मानसिक तनाव में हैं, या आर्थिक दबाव में हैं, या वैवाहिक जीवन के किसी समस्या में उलझे हुए हैं। आप उनकी सहायता करें, उन्हें मदद करें, ताकि आज के दिन वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम को रचा है और हम सब उसी की वंशावली हैं। हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान IQ के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण करता है। यह एक मशीनी साधन है और इससे मनुष्य को उसकी उपलब्धियों तथा योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। माप के एक सिरे पर होता है सामान्य से कम और दूसरे सिरे पर सामान्य से अधिक या प्रतिभाशाली, और इसके बीच में कहीं सामान्य है। परंतु परमेश्वर के परखने की विधि बिल्कुल भिन्न है, उसके वर्गीकरण में सबको आना है। आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि कोई भी खरा नहीं। रोमियो की पत्री 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, मानवीय संबंधों के बारे में 3 स्वर्गिक तथ्य हैं जो बिना शर्त सच हैं। तो आइए हम इन्हें देखें। पहला तथ्य है, आदम और उसकी संतान को मरना आवश्यक है। आदि में परमेश्वर ने आदम से कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 2:17 में, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं रचा था, धर्मशास्त्र में यही लिखा है। रोमियो की पत्री 5:12 में हम पढ़ते हैं, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और तब पहला कुरिन्थियों की पत्री 15:22 में लिखा है, आदम में सब मरते हैं, और इब्रानियों की पत्री 9:27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है। जी हाँ, यह पृथ्वी जिस पर आप और मैं वास करते हैं वह एक विशाल कब्रिस्तान से बढ़कर और कुछ नहीं है। दाऊद ने अपनी मरण शैया पर से कहा था, पहले राजाओं की पुस्तक 2:2 में, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ। जी हाँ, यह सच है कि सब मरने वालों का मार्ग कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यह जीवन में निर्वाह करते हुए मनुष्य का चित्रण है। मृत्यु एक दैत्य की नाय इस पृथ्वी में दबे पांव विचरण करती है। मेरे प्रियो, मृत्यु 3 प्रकार की है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। आदम 900 वर्षों तक शारीरिक मृत्यु नहीं मरा था, परंतु फल खाते ही वह मर गया। मृत्यु का अर्थ है अलगाव, शारीरिक मृत्यु का अर्थ है आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद, आत्मिक मृत्यु का अर्थ है मनुष्य और परमेश्वर में संबंध विच्छेद, और अनंत मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से सदा काल के लिए अलग रहना। जी हाँ, यही नरक है, वह स्थान जहां परमेश्वर कभी नहीं जाता। मेरे मित्रों, वह न तो परमेश्वर की आशीषें हैं और न दया है और न परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा तथ्य है, आदम और उसकी सब संतान पापी हैं। परमेश्वर हमारे बारे में कहता है, सब ने पाप किया है। इसका प्रमाण है उसकी मृत्यु, हम सब की मृत्यु। आदम में सब मरते हैं, आदम में सब ने पाप किया है। जी हाँ, अब्राहम एक भला मनुष्य था, परंतु आदम ने पाप किया, जिसका प्रमाण इश्माएल था। कालेब एक भला मनुष्य था, प्रतिष्ठित जन था, परंतु उसके पास रखेल थी। आज भी पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया हुआ है। वह परमेश्वर से विद्रोह की अवस्था में है। वह कैन की नाई परमेश्वर की उपस्थिति से अलग चला गया है। मेरे मित्रों, यशायाह नबी के पुस्तक 59 अध्याय में सबको जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैं केवल पद 2 पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। आदम और उसकी संतान पापी हैं, वे परमेश्वर से अलग हैं। पाप एक प्रताड़ना है, रोग है, महामारी है, जिसने मानव जाति को दूषित कर दिया है। मेरे मित्रों, हृदय की दशा बुरी है, परंतु मानव जाति में कुछ ही हृदय रोगी हैं। कैंसर भयानक रोग है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस रोग के बारे में जानता हूं, क्योंकि बहुत से मित्र, बहुत से लोग जो मेरे निकटता में थे, मैंने उन्हें देखा है। लिखा है कि सबने पाप किया है, परंतु इसमें एक असामान्य व्यक्ति है। मसीह यीशु पाप करने के कारण नहीं मरा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद में उसने अपने विरोधियों को चुनौतियां दी थी, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। वहां पर एक भी नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 18 पद में यीशु ने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। मित्रों, पाप की सार्विकता में प्रभु यीशु नहीं आता है। शेष सबने पाप किया है, अर्थात उसे छोड़कर के सब पाप में हैं। तीसरा तथ्य है, आदम और उसकी सब संतानों ने दया प्राप्त की है। हनोक का उद्धार कैसे हुआ था? विश्वास के द्वारा। नूह एक भक्त जन था, परंतु उसके उद्धार का कारण उसकी ईश्वर भक्ति नहीं थी, विश्वास करना और नाव बनाना ही उसके और उसके परिवार के उद्धार का कारण था। अब हम एक भला मनुष्य को पाते हैं, परंतु उसने भी पाप किया था। अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आज मध्य एशिया में समस्या यही तो है। आज इसराइल और अरबों के मध्य तनाव एवं युद्ध का कारण संभवतः अब्राहम का पाप ही है। यदि उसने मिस्री दासी हाजिरा के द्वारा इश्माएल को जन्म नहीं दिया होता, तो आज अरब जातियां वहां नहीं होती। दाऊद भी एक महान ईश्वर भक्त था, परंतु हम सब स्वीकार करते हैं कि उसने पाप किया था और परमेश्वर ने उस पर कृपा प्रकट की। वह कृपा दर्शन में धनी है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस ने लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अर्थात अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पत्रस ने लिखा है, पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जी हाँ, हमारे परमेश्वर ने आदम की संतान के लिए संभव किया कि हम दया प्राप्त करें। मेरे मित्रों, क्या आपने परमेश्वर से दया प्राप्त की है? आपके लिए भी वह दया है। यह महिमामय सत्य पहला इतिहास के 9 अध्यायों में दी गई वंशावलियों में विहित संदेश का मात्र एक भाग ही है। वह आदम के परिवार की वंशावली है। आप और मैं इसका एक भाग हैं। मित्रों, हम सब एक ही जाति के हैं। हम सब स्वभाव से भ्रष्ट हैं। हम सब के सब समान स्थल पर हैं। हम सब का जन्म समान रूप है, अर्थात हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और आज उद्धार सब के लिए जरूरी है। मेरे मित्रों, अब हम अध्याय 10 में आते हैं और हम देखेंगे आज के विषय को, शाऊल का राज्य। यहाँ हम वह अंतर देख पाते हैं जो परमेश्वर ने शाऊल एवं राजाओं तथा इतिहास की पुस्तक में रखा है। शाऊल की पुस्तकों में हम राजा शाऊल के विषय में बहुत अधिक चर्चा सुनते हैं, और सच तो यह है कि उसका संपूर्ण इतिहास वहां दिया गया है। जब हम इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण देखते हैं, तो वहां केवल एक ही अध्याय है और शेष पूरा पहला इतिहास दाऊद के बारे में है। जो दूसरे इतिहास की पुस्तक तक चलता है, उसके परिवार की कहानी। इसका विषय दाऊद है, शाऊल नहीं। मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ शाऊल मुख्य स्थान पाता है, और यही कारण है कि शाऊल के विषय केवल एक अध्याय हमें आश्चर्य में डाल देता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय का विषय क्या है? क्या परमेश्वर ने शाऊल के असामान्य कर्मों को चुना है? जी नहीं, कर्म मनुष्य को परमेश्वर का प्रशंसा पात्र नहीं बनाते हैं। यह अध्याय शाऊल के कर्मों के बारे में नहीं, उसकी मृत्यु और दफन का वर्णन है। मेरा विचार है कि मनुष्य के इतिहास में एक महान स्थान पाने वाले स्त्री पुरुष स्वर्ग में महत्व का स्थान नहीं पाएंगे। शाऊल के विषय में भी यही सच था। आपको स्मरण होगा कि हमारे पहले और दूसरे शमूएल में हमने देखा कि शाऊल की हत्या वास्तव में किसने की थी। क्या उसने आत्महत्या की थी? उन पुस्तकों में तो इस प्रकार लिखा है, फिलिस्तियों से युद्ध करते समय शाऊल घातक रूप से घायल हो गया था, अतः उसने हथियार ढोने वाले से कहा कि वह उसे मार डाले, क्योंकि वह फिलिस्तियों के हाथ से मरना नहीं चाहता था। उसका अपमान होगा इसीलिए। हथियार ढोने वाले ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया तो शाऊल अपनी तलवार पर स्वयं गिर गया। क्या शाऊल आत्महत्या करने में सफल हुआ था? यह एक सतत प्रश्न है। तब एक युवा अमालेकी ने आकर दाऊद को समाचार दिया कि जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो शाऊल की सांसें चल रही थी, और उसने उससे कहा कि वह मार डाले, और उस अमालेकी ने उसकी हत्या करने का दावा किया। वह शाऊल का मुकुट और कंगन भी लाया कि वह उसकी कहानी का प्रमाण दे, परंतु राजा दाऊद ने उस अमालेकी को यह कहते हुए घात किया कि तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरोध साक्षी दी है। दूसरा सामुएल के पुस्तक 1:16 में हम इसे पाते हैं। राजा शाऊल की मृत्यु का उत्तरदायी वास्तव में कौन था? हमें संभवतः CID बुलाना चाहिए, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हत्यारा स्वयं ही अपराध स्वीकार कर रहा है। मेरे मित्रों, पहले इतिहास की पुस्तक 10 उसके 1-3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पलिस्ती इसराइलियों से लड़े और इसराइली पलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए, और पलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और पलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबिनादाब और मलकीशु को मार डाला, और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। ध्यान दीजिए, वह पलिस्तियों द्वारा घायल अवश्य हुआ था, परंतु मरा नहीं था। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 10:4-7 में, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठड्डा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इसराइली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए, और फिलिस्ती आकर उनमें रहने लगे। मेरे प्रियो, इस वृतांत से तो मेरी समझ में यह आता है कि जिस समय वह अमालेकी वहां पहुंचा था, तब शाऊल मर चुका था। वह अमालेकी जानता था कि दाऊद और शाऊल एक दूसरे के वैरी थे, अतः उसने दाऊद से प्रतिफल की आशा करते हुए यह मनगढ़ंत कहानी सुना दी। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दाऊद की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। दाऊद ने उसकी अपनी गवाही पर ही उसे मृत्युदंड दिया था। मेरे मित्रों, दाऊद ने कहा कि उसके वचनों ने उसे दोषी ठहराया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह युवक झूठ बोल रहा था, उसने शाऊल का वध नहीं किया था। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 10:8-10 में, दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाउल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियार ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। मेरे मित्रों, पलिश्तियों ने शाउल की लाश की ऐसी दुर्गति की। दागोन का मंदिर अशदोत में था। आपको स्मरण होगा कि शिमशोन ने दागोन के मंदिर में स्तंभ खींचकर छत गिराई थी, क्योंकि वे उसका ठड्ढा कर रहे थे। उसी स्थान पर पलिश्ती शाउल की लाश और हथियार को लेकर के गए थे। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाउल के साथ क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाउल और उसके पुत्रों की लोथें उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और 7 दिन तक अनशन किया। मेरे मित्रों, क्या यहाँ कहानी समाप्त होती है? जी नहीं, अभी शाउल के हत्यारे का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इस अध्याय का अंतिम पद हमारे प्रतीक्षारत अपराधी की गवाही प्रकट करेगा। पहला इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यों शाउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। शाउल को घात करने वाला कौन था? यहां लिखा है कि उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मार कर, मित्रों यहोवा ने उसे मार डाला। अय्यूब कहता है अय्यूब के पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 पद में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है, परमेश्वर उत्तरदायी होता है। परमेश्वर कहता है उसने शाउल को हटा दिया, परमेश्वर ने उसे घात किया। क्या आप परमेश्वर को दोष देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को हत्या करने के आरोप में बंदी बनाना चाहते हैं? क्या आप उसे बंदी बना सकते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अनेकों को उठा लिया है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हत्या करना मना किया है। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया है। आप और मैं यदि जीवन दे ना पाए तो हमें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल परमेश्वर जीवन दाता है और वही जीवन ले भी सकता है। उसके लिए जान लेना हत्या नहीं है, आपके और मेरे लिए जान लेना हत्या है। और यदि हम हत्या करते हैं तो हमें अपना जीवन देना होगा। और यही कारण है कि दाऊद ने अमालेकी को मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उसने दावा किया था कि शाउल की हत्या उसने की है। शाउल को मृत्यु दंड क्यों दिया गया? शाउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछताछ की थी और सम्मति ली थी। मेरे प्रियो, शाउल ने सम्मति के लिए शैतान का अनुग्रह खोजा था। इन्हीं कारणों से यहोवा ने उसकी जान ली थी। नए नियम में परमेश्वर ने हनन्याह और सफीरा की भी जान ले ली थी। अनेक जन पतरस को दोषी ठहराते हैं। मेरे विचार में शमौन पतरस सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुआ होगा, और सच तो यह है कि उनकी मृत्यु का उत्तरदायी परमेश्वर था। शाउल अपने अपराधों के कारण मर गया। मेरे प्रियो, अनेक घटनाओं में परमेश्वर हस्तक्षेप करके मनुष्य की जान ले लेता है, इसका कारण वही है। मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए जिसे उसने मुझे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं 7 बार पानी में डूबने से बचा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया है और जीवन दिया है। और अब अतीत में देखता हूँ कि अनेक बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने अनेक बार मनुष्यों को मृत्यु दी है, वह मनुष्य को सेवानिवृत्त करके एक और भी कर सकता है, वह उसे कार्यालय से भी हटा सकता है। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर ने सिंहासन नहीं छोड़ा है, वह आज भी जगत का शासक है। यह जगत उसका है और वह अपनी इच्छा अनुसार इसका शासन देखता है। यदि वह किसी को दुनिया से उठा लेना चाहता है तो वह उसका प्रबंध है, आपका या मेरा नहीं। वह हमारा लेखादाई नहीं है। मेरे मित्रों, हम उसके लेखादाई हैं। वही खेल आरंभ करने वाला है, वह अंपायर है, वह इसका संचालक है और वही इसका निर्णय भी लेता है। आज आप किसकी वाणी सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं या क्या आप मनुष्य की सुनते हैं या शैतान की वाणी सुनते हैं? मेरे मित्रों, पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करता है। कैसा अद्भुत यह अध्याय है। यह एक विवादास्पद विषय पर प्रकाश डालता है जिसे हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर कौन है और वह क्या कर सकता है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को जान लिया है कि शाऊल का हत्यारा कौन है। परमेश्वर ने यह कार्य किया और इसका श्रेय उसी को जाता है क्योंकि वह इसका रचने वाला है और इसको मिटाने वाला भी है। आप किसकी ओर जाना चाहते हैं? शैतान की ओर, संसार की ओर, मनुष्यों की ओर या परमेश्वर की ओर? आज अपने जीवन को परमेश्वर के निकटता में लाएं, उसे धन्य कहें और उससे अपने जीवन में जगह दें। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और यह अध्याय निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत आशीष का समय है, विषय है, तो क्यों ना हम इस पर और मनन करें। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हे प्रभु।